नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एयर इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने एयरलाइन के डिजिटल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ डॉलर का शुरुआती निवेश किया है। कंपनी ने बताया कि आधुनिकीकरण के तहत चैट जीपीटी संचालित चैटबॉट और कई अन्य पहल को अमलीजामा पहनाया जाएगा। एयरलाइन ने विहान .ai नाम के एक रूपांतरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसकी डिजिटल प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कई पहल पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कई पर काम जारी है। कंपनी पहले ही नई डिजिटल प्रणाली, डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाओं और कुशल डिजिटल कार्यबल के लिए लगभग 20 करोड़ डॉलर का निवेश कर चुकी है। बयान के अनुसार कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 साल के दौरान निवेश की गति बरकरार रहेगी। इसके तहत पारंपरिक डिजिटल तकनीकों से लेकर आधुनिक कृत्रिम मेधा तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू किया जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग जैसे उभरते रुझानों को अपनाने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि G20 के पर्यटन कार्य समूह के अगले महीने में होने वाली तीसरी बैठक में मंत्री स्तरीय वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिंह ने रविवार को यहां 3 दिन के ग्रेट इंडिया टूरिज्म बाजार के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि G20 के पर्यटन संबंधी कार्य समूह की अगली बैठक 22 से 24 मई को श्रीनगर में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में गोवा घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कच्छ में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक सिलीगुड़ी में आयोजित की गई थी। इस कार्य समूह का गठन G20 सदस्यों के बीच पर्यटन गतिविधियों को नया मुकाम देने के लिए किया गया। सिंह ने कहा, हमें उम्मीद है कि गोवा में आगे चलकर होने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पर्यावरण को सहारा देने वाले टिकाऊ पर्यटन और स्थानीय कारोबार के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। कार्य समूह की श्रीनगर बैठक अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर में आयोजित होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस बैठक के बाद गोवा में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जून में होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध लाभ 31 मार्च को समाप्त बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में दोगुना से अधिक होकर 840 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फंसे कर्ज में कमी और ब्याज आय में बढ़ोतरी से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। BOM ने सोमवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में ये जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की मार्च तिमाही में बैंक ने 355 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक की कुल आय भी आलोच्य तिमाही में 3,949 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,317 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान उसकी ब्याज आय भी बढ़कर 4,495 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की इसी अवधि में ये 3,426 करोड़ रुपए थी। बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 31 मार्च 2023 तक घटकर कुल ऋण का 2.47% रही। 31 मार्च 2022 तक ये 3.94% रही थी। इस दौरान बैंक का शुद्ध NPA भी 0.97% से घटकर 0.25% रह गया। होंडा मोटर की अनुषंगी इकाई होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शिजेकी इवामा को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की सोमवार को घोषणा की। HIPP ने बयान में कहा कि इवामा ताकाहिरो उएदा की जगह लेंगे। इससे पहले वह 2020 से 2023 तक होंडा मोटर यूरोप की मध्य यूरोप शाखा में अध्यक्ष थे। बयान में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। वह होंडा मोटर के साथ करीब 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इवामा पहले होंडा मोटर जापान में विभाग प्रबंधक और होंडा दक्षिण अमेरिका में बिजली उत्पाद विभाग की महाप्रबंधक रह चुके हैं। रियल एस्टेट फर्म बिरला एस्टेट ने दक्षिणी मुंबई में एक प्रीमियम आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए जमीन का टुकड़ा खरीदा है। कंपनी को इस परियोजना से 600 करोड़ रुपए की बिक्री राजस्व की उम्मीद है। आदित्य बिरला समूह की इकाई बिरला एस्टेट ने हालांकि जमीन के आकार और सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया। कोविड महामारी के बाद घरों की मांग में उछाल को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स अपना व्यापार बढ़ाने के लिए तेजी से भूखंडों का अधिग्रहण करने के साथ साथ जमीन मालिकों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। टाटा स्टील ने सोमवार को कहा कि उसने जमशेदपुर स्थित अपने संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन गैस का परीक्षण शुरू कर दिया है। कंपनी के जमशेदपुर स्थित संयंत्र में 6 ब्लास्ट फर्नेस है। कंपनी ने एक बयान में कहा, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में ई ब्लास्ट फर्नेस में 40% अंतक्षेपण प्रणाली का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस के अंतक्षेपण का परीक्षण शुरू किया है। ये दुनिया में पहली बार है कि ब्लास्ट फर्नेस में इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस को लगातार अंतक्षेपित किया जा रहा है। ये परीक्षण 23 अप्रैल को शुरू हुआ और इसके लगातार 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। बयान में कहा गया कि हरित ईंधन से ब्लास्ट फर्नेस को चलाने से जीवाश्म ईंधन की खपत घटेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसकी एक सहायक कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 212 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। सोलर इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को बताया, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ हथियारों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने कहा कि ठेका 212 करोड़ रुपए का है। सोलर समूह औद्योगिक विस्फोटकों का भी निर्माण करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।